इसलिए पुण्य पुण्य के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं, मिलते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति कैसे होती है? भक्ति उन्मुखी सुकृति से। वैसे सुकृति कैसे होगी? भगवत संबंधी क्रियाओं के द्वारा या भक्ति संबंधी भक्त संबंधी क्रियाओं के द्वारा ये भक्ति होगी। लाख कोई दान कर दे, अपना प्राण भी दान कर दे, उसे भक्ति नहीं होगी। किसे होगी? यदि ठाकुर के लिए एक पुष्प भी लेकर के उनके चरणों में दे दिया, इससे भक्ति होगी। और कुछ नहीं किया, भगवान को प्रणाम भर के आकर के प्रणाम कर दिया, इससे भक्ति होगी। भगवान की कथा सुनी, ये सब, ये जाकर के भक्ति पैदा कर दी, ये सब हो जाएगा। और लाख रूप में कोई खर्च करके यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अपना सर्वस्व दान कर दिया, निज राजा की भांति, हरिश्चंद्र की भांति, दधीची और शिवी की भांति, तो भी भक्ति नहीं होगी। होगी कैसे? भगवत संबंधी कोई क्रिया हो, एक भक्त के टट्टी को फेंकने से भक्ति हो जाए, उनकी उनको एक लोटा पानी देने से भी हो जाएगा, किंतु इन क्रियाओं के द्वारा नहीं होगा। इसी चीज को बतला रहे हैं, जो हमारी भक्ति को उत्पन्न करती है उस धर्म को यहाँ पर पुण्य कहा गया, पुण्य पुण्य। जो हमारी भक्ति को उत्पन्न करती है, उत्पादन करती है, उस क्रिया को यहाँ पर पुण्य कहा गया। कैसे? यहाँ पर आकर के हरि कथा सुन, भगवत संबंधी। कोई एक, आजकल ठंड का समय है, कोई तिलकुट ले आया, वहां पर रखाया, ठाकुर जी की सेवा में लग गया, ये भक्ति उनके अनुकूल कार्य है। कोई आजकल ठाकुर जी को लग रहा है यह ठंड, उसने कहा ठाकुर जी को ठंड नहीं, हमें तो ठंड लगती है, तो उनके लिए मफलर और स्वेटर देखो बना करके दिया है ठाकुर जी को। अब ये भक्ति का अनुकूल कार्य है, जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए कुछ जो उनको आवश्यक है उनको दे, ये भक्ति का कार्य है। ठाकुर जी का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साक्षात, ये सब भक्ति कार्य है। इसके द्वारा भक्ति होती है, और भक्ति होने पर फिर भक्ति की प्रवृत्ति पांच भागों में विभक्त है। उन पांचों में से कोई एक के स्पेशल प्रति हो जाने के बाद में उस भक्ति की सिद्धि होती है। तब ऐसा कोई हो सख्त भाव वाला, तब सख्त होगा। माता भाव वाला लो वात्सल्य में जाएगा, गोपियों के भाव वाले गोपी भाव में जाएगा, अन्यथा नहीं। आरोपी इतना सहज नहीं, इसलिए यहाँ पर पुण्य शब्द का तात्पर्य लिखा गया धर्म। वो भी धर्म कौन? भक्ति को उत्पादन करने वाला धर्म। वो भक्ति का उत्पादन माने भक्त और भगवान की सेवा। कुछ नहीं करता है, तुलसी जी को थोड़ा सा पानी दे दिया, कोई कामना वासना नहीं की, और तुलसी जी को पानी देकर के परिक्रमा कर दिया, भक्ति हो जाएगी, सुकृति होगी। किंतु तुलसी की परिक्रमा करके और जल चढ़ा करके कहा कि हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, थोड़ी सी तुलसी महारानी दया कर देना, उसकी शादी हो जाए, तो वो कर्म हो गया, वो भक्ति नहीं देगी। सब कामना के ऊपर में निर्भर करता है। इस भगवत वचन के अनुसार में जहां से किस क्रिया के द्वारा मेरी भक्ति उत्पन्न होती है उसी को धर्म कहा जाता है, विशेष करके भागवत धर्म। इस वचन के अनुसार में भक्ति धर्म के रूप में ग्रहित हुई, अथवा कृते कृते माने सतयुग में विशुद्ध भगवत ध्यान लक्षण जो पुण्य, जो तद्र पुण्य पुंज संचय किए हैं, वे सर्वथा परम भक्त प्रवर है, भगवान का ध्यान करने वाले। जैसे प्रहलाद महाराज जी थे, क्या करते थे? भगवान चिंतन ध्यान करते थे, जहाँ कहीं जाते वो उनका मन उसी में लग जाता, भगवान ने उनको ध्यान में ही दर्शन दिए। तात्पर्य जो भगवान श्री नंद नंदन ब्रह्मविद गणों के निकट केवल ब्रह्म सुखानु भाव रूपे स्फूर्ति प्राप्त किया,
यहाँ कहते हैं ब्रह्मविद जो हैं तत्व ब्रह्मविद उनके निकट ये भगवान ब्रह्म सुख ब्रह्म जातीय सुख ब्रह्मानंद के रूप में बस अनुभूत होते हैं, दर्शन नहीं देते। दर्शन देने का प्रश्न ही नहीं है, क्या होगा? सुख जो उनको मिलता है उसी को वो ब्रह्म कहते हैं, उसी को कहते हैं। उनको दर्शन नंदनंदन के रूप में नहीं, वो सखा लोग नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण जो ब्रह्मविद बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के लिए ब्रह्म सुख अर्थात ब्रह्मानंद के रूप में दिखे जाते हैं, वो ये कृष्ण उस कृष्ण के साथ में ये बालक क्या कर रहे हैं? धूल और इत्यादि से खेल कूद कर रहे हैं। अतएव तहां तक हृदय केवल भगवान स्वरूप अनुभव सुख जो ब्रह्मानंदी देखते हैं उनके हृदय में ब्रह्मानंद सुख की उपलब्धि होती है कृष्ण को देख करके। उनको देख करके नंदनंदन और ब्रज प्रेम नहीं आएगा, वो उनके साथ में नहीं खेल सकते। दुर्वासा जी थे, ये नहीं खेलेंगे। सनकसनंदन कृष्ण को पाकर के भी उनके साथ में नहीं खेल सकते, और कि तो वह ब्रह्म या नारद भी नहीं खेल सकते। उद्धव जी नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे? उनकी स्तव स्तुति आराधना मिल करके भी करेंगे। भक्तगणों के निकट कैसे सच्चिदानंद घन विग्रह अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा और परमेश्वर रूप में स्फुट हुआ करते हैं भक्तों के। कौन भक्त? तत्वज्ञानी भक्त नारद प्रकृति जैसे। इन लोगों के यहाँ कैसे दिखेंगे? पर ब्रह्म या परमात्मा या परमेश्वर के रूप में ये देखे जाते हैं, वही कृष्ण। कृष्ण को देख करके भी ये लोग उनको कृष्ण नहीं देखेंगे, देखेंगे क्या?
परमेश्वर
ब्रह्म। इस प्रकार से ये लोग गौरव भजन करते हैं। गौरव माने ऐसे भक्ति भाव से आनंद संपत्ति प्राप्त करते हैं और भगवत प्रियतमा गोपियों के निकट केवल नंद किशोर के रूप में सदा स्फूर्ति हुआ। तो वही गोपों के यहाँ तो नंद आनंद और वहां पर नंद किशोर
किशोर शब्द
का क्या नंद किशोर? नंद किशोर माने क्या? अब इसका कोई अप्रतियोगी शब्द नहीं है नंद किशोर। नंदनंदन कहेंगे उसे भी माधुर्य शब्द में नंद किशोर है। नंदनंदन छोटे भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, पौगंड के भी हो सकते हैं, युवावस्था भी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। और नंद किशोर नंद जी के जो ये किशोर हैं,
किशोर मणि
भाई गोपियां सब समय इसी रूप में देखती हैं। सखा लोग कैसे देखेंगे? नंदनंदन के रूप में देखेंगे और गोपियां देखेंगी नंद किशोर के रूप में। सब परम प्रेम संपत्ति विशुद्ध ज्ञान गौरव आदि का अभाव वस्त वहां पर अभाव है, गौरव नहीं, बंधुत्व है, दोनों हृदय एक है नंद किशोर। इसको पहले बहुत व्याख्याओं में इसे प्रकट किया गया है जो क्या इनमें परस्पर भेद है सख भाव में बात्सल्य में और मधुर में क्या क्या हैं। कृष्ण एक ही, द्वारकाधीश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन अलग अलग नहीं तत्व हैं। यहाँ तक कि नारायण भी अलग तत्व नहीं है, यहाँ तक कि विष्णु क्षीरोदशाई विष्णु तक शेष तक एक ही तत्व है, किंतु रस की विचित्रता इन लोगों में है। एक नहीं कहा जाएगा, अचिंत भेदाभेद है। और ये राष्ट्र यह है दिवादिरह युक्त गोपीगण प्रेम के रूप में अत्यंत विवश होकर के मनस्तृप्ति के सहित रमन करते समर्थ होते हैं। कहते हैं कि दिवा भाग में कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं, वो घरों में रहती हैं, उस समय उनसे मिलन उनका नहीं होता, इसलिए सब समय विरह में तड़पती रहती हैं, कृष्ण के साथ में मिल नहीं पाते। किंतु यह बालकों के लिए क्या था? वो कृष्ण से उस समय मिलते हैं और कृष्ण के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, देखो तो कितना इनका सौभाग्य। गोपियां जिनके लिए तड़प रही हैं और सहज स्वभाव रूप में इन लोगों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या गृह में क्या वन में सर्वत्र स्वच्छंद रूप से ये लोग, गृह में तो ऐसा कर नहीं सकती, नंद भवन में न वृषभानु महाराज के घर दोनों मिल नहीं सकते, या कोई भी गोपी नहीं मिलेगी कृष्ण से, किंतु ये लोग क्या गृह में वन में संपूर्ण रूप से सब समय उनके साथ रहने वाले। इसलिए गोप सखाओं के कृष्ण दुर्लभ उतने नहीं है जितने गोपियों के कृष्ण इतने दुर्लभ हैं, और दुर्लभता के ऊपर में ही प्रेम शब्द का विचार होता है,
प्रेम का उत्कर्ष होता है,
किंतु साधारण लोगों के लिए नहीं। साधारण लोग समझेंगे सखा लोग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सब समय उनका मिलन और सब समय उनकी सेवा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए गोपियां आक्षेप करती हैं, आक्षेप ने दुख प्रकाश करती हैं। गोप बालकों की सौभाग्य की महिमा का कौन वर्णन कर सकता, देखो तो कितनी बड़ी महिमा है। हम जिनकी कभी मिल नहीं सकती, उनकी सेवा नहीं कर सकती, वो कृष्ण के कंधे पर बैठ करके चल रहे हैं और कृष्ण उनको अपने कंधे पर ढो रहे हैं, और उस कृष्ण को भी अपने कंधे पर वो लोग भी ढो रहे हैं। कृष्ण को पराजित कर देते हैं और कृष्ण पराजित होकर के बड़े आनंद में भर जाते हैं। चारुण मुस्तुक से कृष्ण पराजित होंगे कि नहीं? नहीं होंगे, किसी काल में भी किसी से पराजित नहीं होंगे, किंतु गोपों के साथ में पराजित हो करके जानबूझ करके अनुभव करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। इन गोपाओं गोप सखाओं का कितना सौभाग्य है। यद्यपि भगवती गोपी सभी सर्वापेक्षा परम सौभाग्यवान महिमा से ख्यात है, परिणित है सर्वत्र, तथापि सुखदेव गोस्वामी ने सहज गोपी भाव आक्रांत हृदय होने के कारण गोपियों के तरह गोप बाल सभी का भी सौभाग्य वर्णन करने लगे। क्यों?
ये भी तो महा
वो गोपी पक्ष वाले हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। इसलिए सर्वत्र वैसा ही भाव उनको दिखता है, इसलिए इन सखाओं का ऐसा सौभाग्य देख करके इनका भी सौभाग्य वर्णन। ओह कितना इनका सौभाग्य, कौन से जन्मे कौन से पुण्य पुंज किए होंगे जो आज ये कृष्ण के सुहित सखा या प्राण सखा प्रिय सखा प्रिय नर सखा होकर के ऐसी सेवा करते हैं। बालकों के इसलिए इस उक्ति को समझो, जो वो गोपी भाव वाले आक्रांत हैं सुखदेव गोस्वामी, उनको याद आई और उसी भाव से इन गोप बालकों का भी। गोपियां स्वयं कहती हैं अक्षुण्णतां फलमिदं न परम विदाम सख्य पशुन अनुवेशयतो वयस्यै। गोपियां स्वयं कह रही हैं वयस्यै सह सखाओं के साथ में कृष्ण गौओं को लेकर के एक वन से दूसरे वन में, उस समय कृष्ण के तरफ में जो बलदेव और कृष्ण हैं जो बंसी बजा रहे हैं, उनमें पीछे वाले जो हैं उनके मुख आंखों से निकले हुए कटाक्ष को जिसने दर्शन नहीं किया न जाने उनके आंखों का फल दूसरा नहीं है, बस यही है और नहीं तो व्यर्थ है। इसलिए वहां पर वयस्य शब्द का प्रयोग गोपियों ने किया है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भला क्यों न करेंगे सखाओं की महिमा का वर्णन। गोपालकों के सही परिवेष्टित श्री कृष्ण मुरली सेवित स्निग्ध कटाक्ष पूर्ण वदन माधुर्य जिनके नयन के द्वारा आस्वादित नहीं हुआ, उनके नयन सनातन गोस्वामी ऐसे ही हैं, जहां होगा उसको ले आकर के अंत में इसी पर घटाएंगे इत्यादि वचनों के द्वारा वन में विहारशील कृष्ण का मुखचंद्र दर्शन व्यतीत खुद आंखों का और फल नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा वर्णन किया, ये सनातन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। जो सखाओं का वर्णन ये गोपियां जी करती हैं, तो और की तो बात क्या। इसलिए सखाओं का कितना सौभाग्य, इस गोपों के इस चरित्र को सुन करके यदि ऐसा ही भाव लाभ करने की जिसके हृदय में आकांक्षा हो जाएगी, वो लोग वैसा ही भजन करते कृष्ण के सखा भाव को। इसलिए सनातन गोस्वामी ने इन सब का संग्रह किया, अपने अपने अधिकार के अनुरूप इन लीलाओं कथाओं में से अपने भाव के अनुसार वो भावों को ग्रहण करेंगे और वैसा ही भजन साधन करते हैं। बस आगे बन जा कृपा
श्री वृंदावन एक पल पियो रहिए, कोटि जन्म के पाप कटत है।
दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि। आदेवि काकुमार गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भुवि दंडवत उद्भटार्थी आस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा धर्विके तव गणे गणना अंगश्यामलिंग छटाभिरभित मंदी कृतेंदी वरम जटंजागुडरोचि सांविदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामदरं राधास्कंद निवेशित जलभुजं न्यायेन दाम भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादिकरङ्गमत् कृपामयीं तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा। हे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेत्तमपेत कृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पित्रेति तन्मयतया तर्वोभिने तं सर्वभूतहृदयं न जयामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणम् भजामि राधां अरविन्द नेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरद्रा नास्ति गतिर्नुका।
कल हम लोगों ने बृहद्भगवतामृत से कितम शतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दर्शन गदानं पर दैवते ने श्लोकी अवतारणा की थी। इसका क्या तात्पर्य है, ये किस लिए सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या की, क्या तात्पर्य है इस श्लोक का, न जाने कितने लोगों ने समझाया, कितने लोगों ने नहीं, हमको नहीं मालूम। इसलिए नित्यानंद प्रभु जी, निताई जी सबसे पहले वो बतलाएंगे जी क्या समझाएंगे।
वो एक ही साथ निताई चैतन्य
बोलिए, बोलो तो कि बुझे छ, हम सबसे पूछे या इतना सहज चीज नहीं पूछ सकते।
गाय तो खाली मंदिर में
दे देंगे हमारे
उनको,
जो जिनका खटाल है
कन्हैया के
पास में चला जाना, वहाँ पर बहुत सी गाय
काल से जाऊंगे
25 वर्ष के बाद में आना। वो जो लड़का खेल रहा है गोप कुमारों के साथ में, वो गोप कुमारों का कोटि कोटि जन्मों का या पुण्य का पुंज है, इसलिए उनके साथ में खेल रहा है। पुण्य का पुंज मैंने साधारण कर्मों के जनित जो पुण्य है वो नहीं, फिर भक्ति के लिए जो सुकृति होती है उस सुकृति का भी ये पुण्य से ऐसा नहीं, कोटि जन्म सुकृति न लभते ये नहीं होगा। तब विशेष विशेष रसिक और तत्त्वज्ञ वैष्णवों के संग में और कृष्ण की विशेष अहित की कृपा से ये चीज संभव है, जैसे दंडकारण्य वासियों का या और लोगों का। ऐसे पुण्य पुंज होने के बाद में वैष्णव की भगवान के अहित की कृपा से ही ये आज बच्चे खेल रहे हैं। ये कौन है? एक तो कृष्ण के परिकर हैं, उनके लिए कोई पुंज पुंज इत्यादि की जरूरत नहीं है। जैसे नंद बाबा यशोदा के लिए तपस्या के द्वारा वो कृष्ण मिले हैं ऐसा नहीं, पुत्र नहीं हुए, वो उनके नित्य परिकर हैं, माता पिता हैं, उनके साथ में लीला में अवतरित हुए हैं। ऐसे ये गोप लोगों को कोई पुण्य से या साधन भक्ति से या प्रेमा भक्ति से वो नहीं मिले हैं, वो तो कृष्ण ही अपने कायव्यूह के रूप में उन परिकरों के रूप में खेल रहे हैं ऐसा सब। और उसमें जो साधन सिद्ध हैं उनके लिए कुछ कहा जा सकता है, ये भी प्रेममयी भक्ति रसिक वैष्णव की कृपा से या भगवान के हित की कृपा से वो तब वहाँ जाकर के बच्चे बन करके खेल रहे हैं। तो वो कौन है? ऐसे सौभाग्यशाली जिस कृष्ण को उससे आसमें, वो कृष्ण कौन है उनके लिए कह रहे हैं। जो सनक सनंदन जैसे महात्मा शतान वो साधु हैं, वो लोग उनको ब्रह्मानंद के रूप में, ब्रह्म सुखानुभूति के रूप में दर्शन, ये उन्हीं की ये मूर्ति है। और दास्य लोग उनको देख रहे हैं, क्या ये हमारे आराध्य देवता भगवान हैं दास्य वाले हनुमान इत्यादि के रूप में। और साधारण व्यक्ति जो मायाश्रित है, माया के द्वारा जिनकी बोहित बुद्धि हो गई है, वो लोग उनको नर बालक जैसे कंस जरासंध दुर्योधन इत्यादि देख रहे हैं, ये नर बालक है। दूसरे एक तटस्थ होते हैं, वो अपराध नहीं करते, उनको सुंदर नर बालक के रूप में देखते हैं। और तीसरे होते हैं योग माया के आश्रित लोग, ये परम मुक्त, ये लोग उनको किस रूप में देखते हैं? चार रूपों में देखते हैं अपनी भक्ति के अनुसार, कोई दास्य प्रभु के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई वात्सल्य के रूप में, और कोई कोई देखते हैं विशेष विशेष प्रियतम के रूप में। प्रियतम के ऊपर में सनातन गोस्वामी ने विशेष बात कही, जो गोपियों के प्रियतम हैं, अर्थात ये गोपियां कृष्ण को देख रही हैं कि गोचारण करते हुए जा रहे हैं, सबसे आगे कृष्ण और बलदेव हैं, एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, बंसी हाथ में है, मुस्कुरा रहे हैं, कटाक्ष के द्वारा देख रहे हैं सखाओं के तरफ में, सखियों के तरफ में। उस समय ये बंसी बजा रहे हैं, स्मित हास्य कर रहे हैं, उस समय में ये कर रहे हैं, ये वयस्यी अर्थात तो गोप बालकों के साथ में ये जा रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये गोपियाँ। ऐसे कृष्ण का जो दर्शन करना, तो ये कृष्ण कैसे हैं? मधुर रस के भी नायक, ऐसे गोपियों के भी प्रियतम जो कृष्ण है उनके साथ में ये खेल रहे हैं, ये विशेषता है। ब्रह्म सुखानुभूति और दासियों के भगवान और नरबालकों के भगवान से भी अधिक यहाँ पर यह विशेषता, गोपियों की जो प्रियतम है उनके साथ में ये खेल रहे हैं, ये इनकी महत्ता सबसे कितना इनका सौभाग्य है ये बात
नहीं। नंदनंदन तात्पर्य एक ही थी,
अभी अभी बोलबो नहीं, अभी अभी तुम्हारे ब्रह्मचर्य धारण पड़े 25 वर्ष तक इतना सहज भाव नहीं समझेगा तो क्या सकते। नंदनंदन और एक नंद किशोर, किशोर कौन देखेगा,
जो किशोरिया है किशोर देखेगा।
और साधारण जितने लोग हैं नंद बाबा इत्यादि सब समय नंदनंदन देखेंगे, और जितने गोप हैं बासल्य वाले देखेंगे, ये तो सहज की बात है। उसके अतिरिक्त भी उनके दास भी देखेंगे नंदनंदन के रूप में भी देख सकते हैं, सखा लोग भी देख सकते हैं, बासल्य वाले भी, किंतु वो गोपियाँ सब समय नंद किशोर के रूप में देखेंगे, उनका किशोर कृष्ण से ही संबंध है। यत पाद पांसुर बहु जन्म कृच्छतो कृतात्म वीर जोगी भी अप्यलभ्य सैव दिग्विषय स्वयं स्थित किं वर्ण्यते दृष्टमहो ब्रजौकशां। यत पाद पांसुर बहु जन्म कृच्छतो, ये पुनः एक श्लोक उन्हीं के लिए बतला रहे हैं। ओह किम वर्णन थे, ओह क्या वर्णन किया जाए। जम नियम योग अनुष्ठान के द्वारा एकाग्र चित्त जो गोपी जन है, योगी जन है, बहुजन कृष्ण तपस्या, कृष्ण माने अत्यंत कठोर तपस्या करके भी जिनके पाद पद्म में लगी हुई चरण की धूलि को भी स्मरण नहीं कर सकते, लाभ नहीं करते, कौन योगी लोग। जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि के द्वारा भी कठोर तपस्या करके भी बहु जन्म में भी कृष्ण के चरण की संलग्न जो धूलि है उसको भी नहीं पा सकते, अहो बड़े सौभाग्य की बात। वही भगवान ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजराज नंदन स्वयं जिनके चक्षुओं के सामने दृष्टिगोचर होकर के और उनके साथ में खेल रहे हैं, उन ब्रजवासियों की सौभाग्य की बात और क्या कहा जाए। उनके साथ में खेल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनके सौभाग्य की क्या बतलाया जाए। अभी कहीं पर ये कौन पुराण है, मरने के बाद में सुनाया जाता है, गरुड़ पुराण कहीं हो रही होगी, उनकी कथा हो रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा, लोग सब सुन रहे हैं बड़े आनंद के साथ में सुन। और कहां ये श्रीमद्भागवत, तो संसार में सबसे सौभाग्यवान कौन है, जो भगवत विमुख नहीं है और जैसे तैसे भगवान को मानते हैं, अन्य देवताओं को भी मानते हैं, वहां से आरंभ हुआ, उन लोगों में भी एकांतिक जो विष्णु भक्त है वो श्रेष्ठ हैं। उन एकांतिक विष्णु भक्तों में भी नारायण के जो एकांतिक भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। उन नारायण के एकांतिक भक्तों में से भी उनमें से यदि कृष्ण भक्त कोई हैं वो श्रेष्ठ हैं। उन कृष्ण के कोटि कोटि करोड़ों भक्तों में से एक कौन जो कृष्ण के प्रति अनन्य भजन करते हैं, ब्रजेश नंदन के प्रति, उनमें सबसे श्रेष्ठ दास्य वाले, उनमें से भी श्रेष्ठ सख्य वाले, उनसे भी श्रेष्ठ बात्सल्य वाले, उनसे भी श्रेष्ठ गोपी भाव वाले, मधुर भाव वाले, वे लोग सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे बढ़कर के और कोई परतत्व नहीं है, परतत्व की यहीं पर सीमा है। उसी को ये कर रहे हैं, हम लोग इसकी महिमा नहीं जानेंगे, महिमा कब समझेंगे। यदि कोई आदमी कोयले की महिमा जानता है ना और उसके साथ में हीरे को दिया जाए तब कोयले की अपेक्षा हीरा की महिमा समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। इसलिए पहले इसकी समझाया, कोटि कोटि कर्मियों से एक वेद ज्ञान युक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ है और उनसे भी जम नियम योग अनुष्ठान इत्यादि करने वाले जो हैं बिना खाए पिए हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, एक पैर की एक अंगुली पर खड़े हो जाते हैं, हाथ ऐसे कर दिया है ना? दोनों हाथों को और एक पैर पर खड़े होकर के बिना खाए पिए तपस्या करते 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 हजार वर्ष हो गए। जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने कितनी वर्ष तपस्या की, 60,000 ऐसे बिना खाए पिए, और वाल्मीकि जी ने भी ऐसे ही तपस्या किया लाखों वर्ष। तब ये लोग क्या पाते हैं, कृष्ण के चरण कमलों के की जो धूलि है उसको नहीं पाते, क्या पाते हैं, विशेष विशेष अधिक से अधिक रूप में गर्भदशाई विष्णु के परमात्मा रूप को जोगी लोग अपने हृदय में अंगुष्ठ परिमाण में ध्यान करते हैं, वो भी आभास। ये क्या चीज है, कृष्ण के की संबित और ह्लादिनी शक्ति जो है उसमें से जो चित्त शक्ति है अर्थात संबित शक्ति है वही चित्त कहलाती है, उसका आंशिक विकृत प्रतिफलन उसमें है, उसमें केवल आंशिक रूप में सत और आंशिक रूप में चित है परमात्मा में, उसको भी नहीं देख पाते हैं वो, क्या उसके आभास को चिन्ह मात्र केवल इतने दिनों के बाद आभास चिन्ह मात्र के रूप में ये योगी लोग पाते हैं, कहते हैं कि हमने क्या देखा, प्रकाश देखा और कुछ नहीं। ये लोग भी कृष्ण के चरण कमलों की धूलि को भी नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन हैं उनके भी मूल गर्भदशाई, उनके भी मूल कर्णदशाई, उनके भी मूल महाशंकरसन, उनके भी मूल मूल संकरसन, उनके भी मूल बलदेव, उनके भी मूल
उनके मूल
उनका मूल का वो अनादि। तो वो ब्रजेंद्र नंदन जिनके आंखों के सामने खड़े होकर के उनसे खेल रहे हैं, कभी हार जाते हैं, कभी हरा देते हैं, कभी अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और कभी उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, उनके साथ में जूठा खा रहे हैं खिला रहे हैं, उनके सौभाग्य की महिमा क्या बताए। अब इसकी टीका कर रहे हैं, ये किसलिए बतला रहे हैं, जो कृष्ण की महिमा साधारण नहीं है भाई, जो लोग इन कथाओं को सुन रहे हैं वो श्रोता भी साधारण नहीं है, यदि समझ रहे हैं तो को समझने की चेष्टा करनी चाहिए, हम जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं साधारण नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर लोग होंगे जो कि कहने पर भी सत्य नारायण की कथा को नहीं छोड़ पाते हैं, वो कृष्ण की क्या को क्या समझेंगे, सत्यनारायण और ये कृष्ण में भी बराबरी समझते हैं। अच्छा एक बात बतलाओ, हम लोग इतने आदमी हैं, आप लोग विचारक हैं, बतलाइए ये पांच पेड़े और उसमें पांच दे दो वो क्या आजकल
गजक
और उसमें और भी कोई अच्छी से अच्छी खोए के लड्डू दे दिए और केसर युक्त एक एक ग्लास दूध दिया जाए, एक भक्त ने ये दिया अपने घर पर, भक्तों का खूब अच्छी तरह से सम्मान किया और एक व्यक्ति ने केवल एक एक तुलसी दे दी, अब बतलाओ तो दोनों में महिमा किसकी अधिक है, वो पेड़े लड्डू दिया इसकी महिमा है ना तुलसी की महिमा है पत्ते की, कौन अच्छा है, है? वो तो तुलसी के देने से वो बड़ा हुआ, लड्डू पेड़े की वजह से नहीं, यदि इतना सा तुलसी दे दिया तो उसकी महिमा बढ़ गई और यदि दो तुलसी दे दे चार दे दे तो
जिसका लड्डू पेड़ा में मन है उसको अच्छा लगेगा, जो भक्ति करना चाहता
है जो अच्छा भक्ति का विचारक है वो देखेगा तुलसी की महिमा, जिसमें सत्यभामा के सोने के जितने भी थे सब कुछ बेकार के हो गए। एक तुलसी का पत्र चढ़ा दिया, वो अधिक भार हो गया, कृष्ण हल्के हो गए। ये तुलसी की इतनी महिमा है। इसलिए कीर्तन को, हरि कथा को या किसी चीज को भी इन चीजों से, लौकिक चीजों से कभी मत देखना, नहीं तो इसकी भक्ति की महिमा उसके समझ में नहीं आया। एक स्थूल व्यक्ति है, जड़ पदार्थ है। यदि कोई एक तुलसी का पत्ता देता है, समझो जा हमारा जन्म जन्म कृताप हो गया। इसलिए इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ करके ये चलना चाहिए। अब नहीं तो स्थूल चीजों में रह जाएंगे, ये सब चीजें रह जाएगा। इसीलिए इनकी महिमा बतलाई गई, ये भक्ति की महिमा। भक्त कौन किनकी महिमा बतला रहे हैं? उन बच्चों की महिमा बतला रहे हैं। किनके साथ में खेल रहे हैं? जिनके चरण की धूली की धूली की धूली, ये चित ब्रह्म है, आंशिक चित्त है, वो भी विकृत फलम, जिनका आभास ज्योति के रूप में दिखता है, उनको ही ये योगी लोग नहीं पाते। किंतु कितना कठोर तपस्या करते हैं। एक अभी आदमी, अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता है कि नहीं, यह रेलवे लाइन का जो पुल है उसके पास ही में कहीं करीब 5-6 दिन तक ऐसा ही हाथ किए हुए खड़ा था। आज से 5-7 वर्ष की 10-15 वर्ष ऐसे ही खड़ा किया, उन घिराता ही नहीं, हाथ फूल गए हैं, सूज गए, तब भी ऐसा। कोई यदि 1,00,000 वर्ष तक ऐसे ही हाथ खड़ा करके कोई रहे तो उसको कृष्ण मिलेंगे कि नहीं? नहीं मिलेंगे। किंतु 1,00,000 वर्ष तक ऐसा करना कितना कठिन काम है। जो अपने चित्त वृत्तियों को, जो वायु से भी अधिक चंचल है चित्त की वृत्तियां, जरा मिला करके देखो, 1 मिनट के लिए रोक करके रखो तो अपने मन को नहीं रह सकते। वायु को बांध लेना कठिन है, सहज है, किंतु मन को रोकना बड़ा भारी कठिन है। कैसे? इस चीज को समझो। प्राण वायु है ना, जो आती जा रही है सांस प्रश्वास, इनको 1 मिनट के लिए रोको तो 1 मिनट घड़ी की तरफ में देखो। अच्छा, 1 मिनट रोक लेते हो, 2 मिनट रोको तो बस हो गया, 10 मिनट रोको तो इसको भी रोक सकते हैं 10 मिनट। कोई कोई ऐसे हैं जो अपने प्राण वायु को रोक करके 1 महीने तक रोक रखा। कौन? हमारा ध्रुव जी ने रोका। किंतु मैं ये एक बात थी कि उसमें नारायण को देख रहे थे इसलिए रुक गया, और यदि वहां पर नारायण को नहीं देखता ना, आश्रय नारायण नहीं होते तो वो नहीं रुकता। ये भी सहज है, इसको भी आदमी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। हिमालय में ऐसे लोग हैं जो अपने प्राण वायु को 5,000 वर्ष तक रोक करके रख दिया, ऐसे लोग हैं। किंतु इन लोगों का भगवान से कोई भी संबंध नहीं है, ये करोड़ों जन्म में ऐसा करके भी उस भगवान को नहीं पाएंगे। इनको क्या मिलेगा अधिक से अधिक? ज्योति कुछ दिखेगी,
ब्रह्म ज्योति
थोड़ी सी देख जाएगी बस। और ये ब्रह्म ज्योति क्या चीज है? कृष्ण के अंशों के विकला के, कला के, विकला के, सुकला के, वो है कहां? ये लोग किसके साथ में खेल रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ में। इसलिए आप लोग कैसे व्यक्ति की आराधना करने जा रहे हैं? आपके इष्ट देव कैसे हैं? उसमें सत्यनारायण ब्रह्म से भी नीचा है, उसमें साफ काम उपासना है, उसे भक्ति कभी नहीं हो सकती। 1,00,000 जन्म तक कोई सत्यनारायण की कथा कहेगा, सुनेगा तभी नहीं। उसमें क्या मिलेगा? पुत्रम देही, धनम देही, जसो देही, सुंदरी भार्यां देही, सुंदरम वरम देही, ये सब
रहेगा।
बस यही तक मिलेगा, भगवान की कृपा उसमें नहीं मिलेगी। किंतु क्यों किया व्यास जी ने पुराणों में इसका उल्लेख क्यों किया? जा करने के लिए, जो एकदम नास्तिक है, जो कुछ भगवान नहीं मानते हैं कुछ, वो धन के लिए भी तो भगवान को करेंगे। इस दृष्टि से लगाया, किसी तरह से बहके हुए लड़के को, बहके हुए संतान को थोड़ा सा काम में लगाना है। इसलिए ये सब उपासनाएं सकाम उपासनाएं, चित्त कुछ शुद्ध हो जाएगा, और यदि साधुओं का संग हो जाएगा तो भक्ति उसको मिल जाएगी और भगवान को ये समस्या करेगा कृष्ण को। हम लोग भी ऐसे ही बाके हुए थे। धीरे 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 साधुओं का संग मिलता गया, सबको छोड़ते गए। यहाँ तक कि जितने अवतार हैं सब अवतारों की भी, देवताओं की तो बात ही क्या, सब अवतारों को भी छोड़ करके अनन्य रूप में कृष्ण का शरण लिया। इसको मैं सबसे अच्छा समझ। अब गुरु जी का जब से संग हुआ तो कहा जिसे नहीं, इससे भी एक उपास्य बड़ा है कृष्ण से भी। वो क्या है, कृष्ण के जो उपास्य है वो ही हमारे उपास्य है, वो उपास्य सबसे श्रीमती राधिका जी है ना। इसलिए उन लोगों को समझना साधारण खेल नहीं है, इसीलिए ये सब इतना कह रहे हैं। इसलिए इन सबको भक्ति को समझना चाहिए, भक्ति संबंधी भगवत संबंधी वस्तुओं को समझना चाहिए। अन्न दाल तरकारी पूरी बालपुआ खीर कचौड़ी महन भोग और पेड़े जिसके संबंध से पवित्र होते हैं, किनके संबंध से,
तुलसी के संबंध से,
तो उस तुलसी की महिमा कितनी है समझो। इतनी महिमा है जी, हमारे अद्वैताचार्य ने देखा जी भगवान को कैसे बुलाए, हमारी बात कैसे सुनेंगे, किस चीज के लिए बता। उन्होंने कहा जब तुलसी के द्वारा ही भगवान अपने को बेच देते हैं, बस तुलसी लिया और भगवान के चरणों में अर्पित करके कहा जे प्रभु मैं आपको ये तुलसी पत्र अर्पित कर रहा हूँ, आप यदि नहीं आए हमारी बात नहीं सुना तो मैं विश्व को ध्वंस कर दूंगा। भगवान का आसन हिल गया, इसलिए उनका नाम हो गया नाड़ा। उन्होंने भगवान का आसन ही हिला दिया तुलसी पत्र के बल पर। इसलिए भगवान और भक्ति, वैष्णव भक्त इनके संबंध में जानना चाहिए, ये चेतन में चिन्ह पता है। इनकी महिमा हमारे यहाँ नहीं समझ में आती है, संसारिक चीजों की महिमा आती है। अभी कोई कह दे साधारण लोगों को इसमें से जो हरि नाम दिए हैं, तुमको अभी 10 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, तुम जरा गणेश की पूजा कर दो आज के लिए, तो व्यक्ति क्या करेगा, क्या हर्ज है गणेश की पूजा कर दें। तो एकांती कृष्ण का भक्त किसी स्थिति में नहीं करेगा, चाहे मर जाएगा मिट जाएगा जो कुछ हो जाएगा। एक भक्त था, एक भक्त था भगवान का, उस समय दक्षिणात्य में एक राजा थे। देखा जी ये सबको वैष्णव बना रहा है। उन्होंने उसको बुलाया, आज शंकर जी की पूजा यहाँ पर करना होगा, और तलवार लेकर के खड़ा हो गया। यदि तू नहीं करेगा, युद्ध करता है जो नहीं करूंगा तो अभी तलवार से उड़ा। उन्होंने देखा भाई ये भगवान का भजन करने का जन्म है, मैं क्या करूं, यदि नहीं भजन करूंगा आज नहीं इनकी पूजा करता हूं तो ये काट देगा। अच्छा काटेगा तो पीछे पहले हम चतुराई करके जरा देख लें। पसंद अच्छा भाई मैं पूजा करता हूं, ऐसा कर करके पुष्प चंदन ये सब दे करके और पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है, मनी मन में मंत्र उच्चारण कर रहा है, ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः इत्यादि, एतत्पद्यं कृष्णाय नमः, ओम नारायणाय नमः, पूजा कर रहा है। वो पूजा में निविष्ट हो गया नारायण की पूजा में, इतने में मुख से निकल गया ओम नारायणाय नमः। वो राजा को भूल गया, जय राजा तलवार लेकर के खड़ा, जब निकल गया अरे तू नारायण की पूजा कर रहा है। वो सोच रहे ये कह रहे थे ये देवता तो उनकी विभूतियां हैं, ये तो भगवान नहीं है, किंतु विभूति के माध्यम से भी उनको हम पहुंचाएंगे नारायण को ही, इसलिए विभूति को भी ऊपर से दिखला रहा था, अब देना चाहिए उस शंकर जी के उस पर, वो न दे करके पास में गिरा रहा था, ओम नारायणाय नमः, बस वो बिगड़ गया शंकर। तो हम इसकी पूजा करता बस तलवार उठाए, इतने में वो जो विग्रह थी फट गई और उसके भीतर से कुरुदेव निकल गए, और राजा को कुष्ठ व्याधि न कि क्या क्या कर दिया। इस प्रकार के सब उदाहरण मिलते हैं। हमारे उपास्य देव ऐसे हैं, कोटि कोटि दुर्गा कोटि कोटि शंकर कोटि कोटि ब्रह्मा इत्यादि सबको वर दे दे और उनको जो चाहे उनको दे, उन्हीं के नाम के बल से ये लोग दूसरों को ये फल देते हैं। इसलिए एकांतिक वैष्णव इस चीज को समझता है। आज मैंने स्पष्ट रूप से ये सब कहा, ये प्रसंग आ गया है, नहीं तो बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं। दुखी होने की बात नहीं, ये बात परम सत्य है, इसलिए एकांतिक होना चाहिए। इसलिए पहले उनकी महिमा बतलाई योगियों की। योगी लोग क्या करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। जो मन एकाग्र करना बड़ा भारी कठिन है, जरा कर करके देख लो तो एक सेकंड के लिए नहीं होगा। यहाँ तक कि प्राण वायु को जो रोक सकते हैं ये लोग, किंतु इन लोगों के लिए भी करोड़ों वर्षों में ऐसे दुष्कर कार्यों के द्वारा, कठिन तपस्या के द्वारा कृष्ण की चरण की धूली माने क्या, धूली माने यहाँ क्या, कृष्ण के जो अंश हैं उनके अंश के जो कला हैं, उनके कलाओं के जो विकला सुकला हैं, उनके लिए यहाँ पर चरण की धूली, उसी को नहीं प्राप्त कर, उसकी बल्कि ज्योति को प्राप्त करते हैं। बस इतना ही समझो। और वो भी ज्योति क्या है, भगवान की सच्चिदानंद में से चिद का आंशिक विकृति प्रथम फलन वो उस रूप में। तो वो कृष्ण कैसे हैं भाई, उन कृष्ण के साथ में ये खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, ये कैसे हैं। इसलिए कृष्ण को समझना चाहिए ये कृष्ण साधारण नहीं है, समस्त अवतारों के भी अवतारी हैं, समस्त अंशों के भी पूर्ण रूप में अंशी हैं, वही सबके कारण हैं, सबके आदि हैं, और स्वयं अपने अनादि और दूसरों के आदि हैं। ये कृष्ण, ये मथुरा में आने वाले ये साधारण नहीं हैं, और ब्रज में इनकी उपासना इतनी बड़ी चीज है, हम लोग नहीं समझेंगे, कौन समझेगा, समझेंगे नारद प्रभृति, उद्धव इत्यादि लोग, ब्रह्मा इत्यादि लोग, शंकर इत्यादि, ये लोग कुछ समझेंगे। अब वो टीका में व्याख्या बतलाएंगे। कितना बजा, साढ़े छः बज गया है, तो आज इन्हीं तक रहे, कल इसके बाद में हम बतलाएंगे कीर्तन की। आ जाओ जल्दी।